ओम शांति। संगम युग अलौकिक अनुभूति के लिए है। सारे कल्प में एक ही बार अलौकिकता का अनुभव करने का मौका मिलता है। बाकी सब कुछ तो और जन्मों में भी मिलेगा। भौतिक, सांसारिक, दैहिक ये प्राप्तियां और अनुभूतियां तो पूरे चक्र में मिलेगी। लेकिन संगम युग अतींद्रिय अलौकिक पारलौकिक प्राप्तियां और अनुभूतियों के लिए है। इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना है। अगर हमें अपनी आत्मिक उन्नति करनी है तो हमें अपनी भौतिक कामनाओं को कम करना होगा। हम सबका ये लक्ष्य रहता है कि हमारा मैक्सिमम टाइम माइंड, मनी इस अलौकिक पुरुषार्थ और सेवा कार्य में सफल हो। और बाबा के सत्य ज्ञान से अवेयरनेस भी हमारे में इतनी आ जाती है कि हम अपने आप को पूरा ही समेट लेते हैं। सिर्फ बाबा को याद करने की बात नहीं है, वो तो भक्ति में भी भगवान को बहुत याद करते थे। भगवान का सही परिचय नहीं था, बाकी भगवान से प्यार था, याद करते थे और भगवान के नाम पर समय, शक्ति, धन सफल भी करते थे। पर संगम युग में हम सिर्फ याद नहीं करते हैं, हम पूरा जीवन ही बाबा के साथ जोड़ देते हैं। प्रैक्टिकली सर्व संबंध बाबा से जोड़ते हैं। बाबा ही सब कुछ, बाबा ही सर्वस्व, क्योंकि और जन्म में तो परमात्मा से मिलन मनाने की बात ही नहीं है, जानते ही नहीं। अभी बाबा आकर मिलते हैं, संपूर्ण सत्य ज्ञान देते हैं। ये समय है भगवान हमारे पर बलिहार जाते हैं और हम भगवान पर कुर्बान जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रोज अपना पोता मिल देखो। भगवान के साथ हमारा क्या हिसाब बन रहा है? बुद्धि वहां खींचती है न जहां हिसाब किताब है। ऐसे ही मन बुद्धि भटकते नहीं है, हिसाब से भटकते। हमारे मन बुद्धि बाबा से लगे रहे, उसके लिए हमें बाबा से हर संबंध से हर रीति से हिसाब बनाने तो दो चीज है, जमा कितना, खर्च कितना। एक है पुरुषार्थ, बाबा जो सत्य ज्ञान देते हैं उसको जीवन में कितना लाते हैं। तो बाबा कहते हैं ना, पुरुषार्थ से प्रारब्ध जमा होती है। कितना पुरुषार्थ में लाते हैं? मम्मा क्यों जल्दी संपूर्ण बन गई? दादियां क्यों जल्दी संपूर्ण बन गई? क्योंकि उनके जीवन में बाबा के सिवाय और कोई अल्टरनेट नहीं था। जीवन में कोई विकल्प नहीं था, बाबा माना बाबा बस। अनन्य भाव जिसको कहते हैं, भक्ति में नौधा भक्ति कहते हैं। संगम युग में बाबा कहते हैं अनन्य प्यार, अनन्य समर्पण मयता। सत्य मिल गया, परम सत्य मिल गया और उसने सारे ही सत्य हमें बता दिए। बाबा कहते हैं एक बाप को जानने से सब कुछ जान जाते हैं। हमें और कहीं बुद्धि दौड़ाने की जरूरत ही नहीं। वो अनन्य भाव, अव्यभिचारी योग, अपने पुरुषार्थ को देखिए। पहले जानते नहीं थे पर भक्ति में मेहनत करते थे। सही ज्ञान नहीं था पर इच्छा थी आत्मा को पावन बनने की, पापों से मुक्त होने की। तो कितनी कठिन मेहनत की। अब सही ज्ञान है, समय चढ़ती कला का है। खुद भगवान हमें रोज पढ़ाते हैं, आदि पिता नंबर वन आत्मा हमें मार्गदर्शन देती है। पर अपने आप से पूछना है, तीव्र इच्छा है मेरी अपनी तीव्र इच्छा है संपूर्ण पावन बनने की, बाप समान बनने की। तीव्र इच्छा होगी तो जो बाबा कहते हैं वो हम आचरण में लाएंगे, पुरुषार्थ में लाएंगे। अब तक हमने, हमें जो पसंद है, हमें जो सहज लगता है, हमें जो अनुकूल है, वो हम करते हैं। देखो, हर एक अपने आप को देखो। ये समय है, बाबा जो चाहते हैं वो मुझे करके दिखाना। इसलिए बाबा ने तो सारे राज बता दिए, सब सत्य समझा दिए। हमने कहां तक आचरण में लाया। इसलिए पुरुषार्थ का महत्व है। बाबा कहते हैं, दादियां कहती हैं, बड़े हमें समझाते हैं, मेरा अपना कहना क्या है, मेरा अपना कहना क्या है। जब तक हम लक्ष्य नहीं बनाएंगे, हम ठानेंगे नहीं, तब तक तीव्र पुरुषार्थ नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं ना, तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। मेरा कहना क्या है, अपने आप से पूछो। जो बाबा कहते हैं वो ही मुझे करना है। अब मेरी और कोई इच्छाएं नहीं, मेरे और कोई विचार नहीं। जो बाबा कहते हैं वो पुरुषार्थ मुझे करना है। पुरुषार्थ से स्वरूप बनना, धारणाएं करना, स्थिति बनाना, वही प्रारब्ध का आधार है। पुरुषार्थ, पढ़ाई, अच्छा अध्ययन करेंगे तो अच्छा पुरुषार्थ चले। मुरली का अच्छा अध्ययन चाहिए। योग तपस्या, क्वालिटी ऑफ योग चाहिए। टाइम पास नहीं, जब बाबा की याद में बैठते हैं चारों ओर से डिटैच हो जाना है, समेट लो, मेरी पूरी चैतन्यता बाबा के पास उपस्थित हो जाए। क्वालिटी ऑफ योग कितना हम करते हैं, और क्वांटिटी ऑफ योग भी चाहिए। 5 मिनट बाबा के कमरे में बैठ गए और चले गए, इससे विकर्म थोड़ी विनाश होंगे। बाबा कहते याद तपस्या का रूप ले, तपस्या माना समझ पूर्वक, लक्ष्य पूर्वक, दृढ़ता के साथ लंबा अभ्यास करना, वो तपस्या कहा जाता है। दुनिया में भी कहते हैं ना, भाई इसको ऐसे ही नहीं मिला है, बहुत मैंने तप किया है ना, मेहनत की है। समझ पूर्वक, लक्ष्य पूर्वक, मेरा लक्ष्य हो। तपस्या भक्ति में भी 2 लक्ष्य से की जाती है, एक आत्म शुद्धि के लिए, और परमात्मा प्राप्ति के लिए भक्ति में इसलिए साधना करते हैं। हम भी आत्म शुद्धि के लिए तपस्या करते हैं, विकार का कोई अंश मुझ आत्मा में न रहे। हमें भगवान मिल चुके हैं, हमें भगवान का संपूर्ण सत्य ज्ञान मिल चुका है, हम तपस्या करते हैं परमात्मा से पूर्ण प्राप्ति के लिए। ज्ञान, गुण, शक्तियां, अनुभूतियां, हम इसके लिए तपस्या करते हैं। अपने शुद्ध आत्मिक स्वरूप का अनुभव करना है। मेरे अपने शुद्ध स्वरूप में ही शांति, सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति की अनुभूतियां समाई हुई है। हम कितना देहभान से डिटैच होते हैं, हर कर्मेंद्रिय से देहभान का त्याग, हर कर्मेंद्रिय में आत्माभिमानीता का तेज धारण करना है। हमें तो ये तपस्या और ये अनुभूतियां करनी है। शरीर से यहां है, मन बुद्धि से असली घर में। मन की आंख से असली घर को, असली आत्मस्थिति को, असली बाबा के सानिध्य को अनुभव करना है मुझे। जो दिखाई देता है उसमें मैं भटक न जाऊं। अब जहां जाना है, जिसके साथ जाना है, जिस स्थिति से जाना है, उसमें मुझे मगन रहना, ये हमें खुद लक्ष्य बनाना होगा। भगवान ने तो सब कुछ बता दिया हमें, पर मेरे अनुभव और आचरण में ये बातें आए वो तो मुझे लक्ष्य बनाना होगा ना। तो चेक करो, निश्चय को चेक करो, पढ़ाई को चेक करो, वैराग्य को चेक करो, त्याग को चेक करो, तपस्या को चेक करो। ये सब चीजें पुरुषार्थ से रिलेटेड है। सूक्ष्म रूप से अपने आप को देखो। लंगर उठ चुका है, इस कलियुगी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठ चुका है। कहते हैं ना, वो नाविक सारी रात चप्पू चलाता रहा, पतवार चलाता रहा। सवेरा उजाला हुआ पर किनारे पर पहुंचे ही नहीं। जब उजाले में देखा तो क्या पता चला, लंगर उठाया ही नहीं था। हम भी रोज सेंटर जाते हैं, आते हैं, रोज जाते हैं, रोज आते हैं, रोज क्लास करते हैं, रोज पुरुषार्थ करते हैं, पर लंगर उठाया है? वैराग्य है? बिना वैराग्य योग नहीं लगेगा, अपने आप को समेट नहीं सकेंगे। जरूर कहीं आकर्षण है, आसक्ति है, तो बुद्धि वहां जाती है। संगम युग कौन सी प्राप्ति के लिए है? आत्मा की वो शुद्ध असली सत्य स्थिति प्राप्त करने के लिए, खुद को अनुभव हो, मैं अंदर से शुद्ध आत्मा हूं। सिर्फ कर्म में नहीं, मन सा भी शुद्ध है, वो पुरुषार्थ बल देता है, जमा होता है। जिसके पास जितना जमा होता है वो निश्चिंत निर्भय रहता है कि नहीं? कितना भी बड़ा नुकसान आ जाए, खर्च आ जाए, बात आ जाए, प्रसंग आ जाए, वो निश्चिंत रहेगा कि मेरा जमा है, मैं ये कर सकूंगा, इस परिस्थिति को मैं पार कर सकूंगा। उनमें हिम्मत रहती, स्थिरता रहती, निश्चिंत रहता है। हमारा जितना जमा होगा हम निश्चिंत, निर्संकल्प, निर्भय रहेंगे। बाबा ने कहा ना कल की मुरली में ही, जो जितना मदद करेंगे अंत के समय बाबा भी उनको मदद करें, क्योंकि हमारा जमा का हिसाब है। कईयों से हमें मदद नहीं मिलती क्योंकि हमारा उनके पास कोई जमा का खाता नहीं है। जो कुछ स्थूल और सूक्ष्म इस अंतिम जन्म में मेरे पास है, देख लो क्या क्या है। स्थूल और सूक्ष्म बुद्धि, गुण, कला, विशेषता, ये सूक्ष्म है। हिसाब को समझने की बहुत जरूरत है कि हम बाबा हमें क्या देते हैं, यज्ञ हमें क्या देता है, हम क्या देते हैं, हम कितने उपयोगी हैं बाबा के कार्य में। यज्ञ से, बाबा से, दादियों से, निमित्त आत्माओं से, और हम आपस में कितनी पालना लेते हैं। पर उसके सामने जो भूले करते हैं, छोटे मोटे पाप करते हैं, अवज्ञाएं करते हैं, डिसर्विस करते हैं, ये सब माइनस होता है, ये माइनस होता है। इसलिए बाबा कहते हैं रोज अपना पोता मिल देखो। तो एक पुरुषार्थ का हिसाब देखो, आज दुनिया में आत्मबल से लोग कितने आगे बढ़ते हैं। हमने दुनिया में कुछ विशेष नहीं किया, बाबा मिल गए, ज्ञान मिल गया, बुद्धि दुनिया से निकल गई, पर जो ज्ञान और योग हमने जीवन के लिए अपनाया, उसमें हम विशेष क्या बने, उसमें हमने क्या विशेष करके दिखाया। हर कोई अपने अपने प्रोफेशन में स्पेशलाइजेशन करते हैं, एक्सपर्ट बनते हैं, फिर वो खेल जगत हो या फिल्म जगत हो या व्यापार जगत हो या जो भी हो, जो जिस क्षेत्र को चुनता है उसमें ऊपर उठता है, कुछ विशेष कर गुजरने की मेहनत करता है। हमने ज्ञान और योग को जीवन के लिए चुना, हम उसमें विशेष क्या बने, किस बात में हमारी मास्टरी। भगवान मिला, हमने क्या बन के दिखाया। इसलिए पुरुषार्थ पढ़ाई का हो, तपस्या की हो, योग की हो, त्याग की हो, वैराग्य की हो, कितना जिगरी हमने किया। दूसरा है, बाबा कहते हैं संबंधों के द्वारा, हमने लौकिक, अलौकिक या जो भी आत्माएं संबंध संपर्क में आती हैं, दुआएं लेनी है, दुआएं देनी है। वो कितनी जमा की, है ना, कोई स्वार्थ मतलब नहीं, दुआएं प्राप्त करना, लक्ष्य रहे। बाबा कहते हैं ना, दाता के बच्चे हो। जो सेवा करते हैं, शुद्ध सेवा का भाव हो, मिक्सचर नहीं, अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं प्राप्तियां नहीं, सेवा शुद्ध भाव से करनी। सेवा तो हम सब करते हैं, पर बाबा कहते हैं ना, मम्मा बाबा मिसल, देहत का भाव, शुद्ध सेवा भाव, मतलब का नहीं। थोड़ा गहराई से चेक करेंगे तो पता चलेगा, मतलब से सेवा करना, इससे क्या मिलेगा उस हिसाब से सेवा करना, अपनी प्रसिद्धि के लिए सेवा करना, अपने नाम मान शान के लिए सेवा करना। सेवा भी बेहद का निस्वार्थ भाव से कर, अपने अपने की सेवा करना, जातिवाद प्रांतवाद जोनवाद नहीं, बेहद। वो जमा होती है, एक है सेवा में धन साधन बुद्धि गुण कला समय शरीर सब लगाना, सफल करना। पर सफल किया हुआ जमा कौन सा होता है? बाबा कहते हैं ना, जो निमित्त भाव से कर, निमित्त भाव से करते। बाबा ने कहा था कि बाबा की प्रत्यक्षता के बीच कौन सा पर्दा आ जाता है? बच्चों के मैंपन और मेरेपन का। हम सेवा करते हैं, सहयोगी बनते हैं, पर अधिकार भी करने लगते हैं, मैपन प्रचार करने लगते हैं। मधुबन आएंगे तो भी तुम आएगी तो मैं आऊंगी, आप नहीं आएंगे तो मुझे भी नहीं आता, एक दो के आधार पर आते। सहयोग करते हैं तो भी एक दो से पूछते हैं कि तुम कितना कर रही हो, तो चलो मैं भी इतना कर, क्यों? मेरी अपनी लगन है बाबा से, मेरा अपना प्यार है बाबा से, मेरा अपना लक्ष्य है स्वाहा होने का। एक दो को पूछ के क्यों करना? हरेक की अपनी अपनी कैपेसिटी है ना। बाबा हमेशा कहते हैं, आपके पास जितना है उसमें से कितना करते वो हिसाब बनता है। बाबा कहते हैं ना, गरीब 100 करता है, धनी 1000 करता है, कितना है उसमें से कितना करते हिसाब तो वो बनता है। समय पर निर्संकल्प होकर एक धक से जो बाबा के साथी मददगार बनते हैं उनको अंत तक मदद करने के लिए बाप बंधा हुआ, पर समय पर भगवान को हमारी मदद कब चाहिए, कब चाहिए, कब चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, संगम युग में चाहिए, अभी उनको स्थापना का कार्य करना और हमारे द्वारा करना है, क्योंकि भाग्य हमें लेना है। भगवान करेगा तो भगवान पाएगा ना, हम करेंगे तो हम पाएंगे। संगम युग प्रैक्टिकल करने का युग है। सतयुग त्रेता तो प्रारब्ध है, द्वापर कलयुग तो भक्ति में यादगार है, रीत रस्म है। प्रैक्टिकल करने का समय संगम युग है। भगवान जब आते हैं तब हम क्या करते हैं? भक्ति में हम बहुत व्रत उपवास करते थे, बहुत यात्राएं करते थे, बहुत ब्राह्मणों को खिलाते थे, दान पुण्य करते, अच्छी बात है। अब भगवान आए हैं तब क्या कर रहे हैं? भई आप हमें बुलाओ कि आओ आओ आओ, और जब हम आए तो आप शांति से बैठो भी नहीं, बात भी ना करो, खातरी भी ना करो, तो हम कहेंगे ना भई ये तो ऐसे ही झूठा बुलाते थे, ऊपर ऊपर से बुलाते थे। भक्ति में हमने बहुत पुकारा, बहुत बुलाया भगवान को, अब आए हैं तब हम क्या कर रहे हैं? और जो करते हैं निमित्त भाव से करना तो जमा होता है। अगर मैंपन, कर्तापन, मेरेपन के हिसाब से करेंगे तो भगवान वाला हिसाब नहीं बनेगा, एक का पदम गुणा वो हिसाब नहीं बनेगा, क्योंकि हमने बीच में अभी भी अपना अधिकार रखा है, इसलिए एक का एक हिसाब बनेगा। एक का पदम गुणा हिसाब पूरा समर्पण मैता चाहिए। तो जमा करने की विधि बाबा ने क्या सिखाई है? निमित्त भाव से करो, दिखावा नहीं, प्रचार नहीं, कितना भी कुछ कर ले उसके बाद भी निर्माण भावना, नम्रता बनी रहे, अहम ना आ जाए, मैपन ना आ जाए। और निर्मल वाणी, कड़वाहट नहीं। जब अंदर में अभिमान आता है तो वाणी कड़वी होने लगती। तो सफल किया पर जमा कितना हुआ वो हिसाब हरेक को खुद देखना है। अगर हमने अधिकार रखा तो दिया ही नहीं ना, तो दिया ही नहीं ना, तो जमा हुआ ही नहीं, निर्संकल्प होके करना। तो ये समय है इस साल यज्ञ ने, कोई मेहमानों के इतने प्रोग्राम नहीं बनाए, खास बाबा के बच्चों के तपस्या के ही प्रोग्राम बनाए। पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, मान सरोवर, शांतिवन, सब जगह बैठिया, सिर्फ मनमोहिनी वन में शिविर और विंग के प्रोग्राम। तपस्या माना, सभी बातों से फारीग होकर अपने साथ फुर्सत से बैठना और खुद को देखना, जो बाबा चाहते हैं वैसा कर रहे हैं। सीजन में एक मुरली रिवाइज हुई थी एक टर्न में, जिसमें बाबा ने ये कहा था कि बाबा का कहना मम्मा का करना। हमारा क्या हिसाब है? संगम युग के वर्तमान को चलाने वाले हम सभी, हमारी महान दादियां एडवांस में चली गई, उनकी महानता से, तप से, त्याग से सब कुछ चला। अब यज्ञ का वर्तमान हम सभी हैं। हम सब ने बहुत पालना ली है दादियों से, बड़ों से, निमित्तात्माओं से। हम सब एक दो की पालना करते हैं, आप हमारी करते हैं, हम आपकी करते। वो रूहानी अनुभूतियां जो दादियों से होती थी, वो अब कौन कराएगा? हम कराएंगे। हमें अपने आप को तैयार करना। यज्ञ में साधन सुविधाएं तो सब कुछ है, पर ये रूहानी अनुभूति कौन कराएगा? जितना हम योगी, तपस्वी, त्यागी, वैरागी हड्डी सेवा करेंगे, तो हम ये अनुभूति करा सके। ओम शांति।